है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज हमारे बीच पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन सभी श्रोता मित्रों का जो पत्र के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा पाए आशीषों को हमारे साथ बांटते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर के वचन को सुनकर अपनी आशीषों को हमसे बांटेंगे। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु जी आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुनता है निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनके हर एक कमी घटियों को दूर करने पाए, उनके पापों को क्षमा करने पाए, उनके जीवन में शांति और प्रेम उत्पन्न करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप हम सबके साथ हो और हमारे सहायक हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्याय 6 इस पुस्तक की एक महान विभाजन रेखा है। यह विभाजन अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकन महाद्वीप के दक्षिण में एक विभाजन रेखा है जहाँ से एक सोता बहता है। यदि आप उस सोते के पश्चिम धारा कागज का टुकड़ा डाल देते हैं तो वह प्रशांत महासागर में जाएगा और यदि उसकी पूर्वी धारा में आप कागज डाल देते हैं तो वह अंटार्कटिका महासागर में जाएगा। अतः वह एक महान विभाजन रेखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम इन बातों को देखेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कहता है वे, अर्थात जीवित प्राणी और प्राचीन दोनों समुदाय यह गीत गाते हैं। सर्वदूतों की मंडली स्तुति गान में कलीसिया के साथ सहभागी होती है। लिखा है गीत गाने लगे, यह अविराम स्तुति गान है। यह स्तुति गान मेमने के लिए है जिसके हाथ में पुस्तक है। इस समय उसकी स्तुति की जा रही है क्योंकि वह सब युगों में और जातियों में मनुष्यों का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, मैं स्वर्ग में पहली बार गीत गाऊंगा। यहां तो मैं कभी भी गीत गाने के योग्य नहीं हूं, परंतु स्वर्ग में मेमने की स्तुति में सहभागी होऊंगा। लिखा है नया गीत, यह मुक्ति का गीत है। पुराना गीत सृष्टि का गीत है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर की संतान गीत गाती है क्योंकि परमेश्वर सृजनहार है। उस युग में परमेश्वर के प्रेम के बारे में कोई भी नहीं जानता था। अब हम अपने उद्धारकर्ता के बारे में गीत गा सकते हैं क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अर्थात बलिदान कर दिया। यह कैसा महान और सुहाना चित्रण है। आगे कहता है कि योग्य है, इससे प्रकट होता है कि संपूर्ण वातावरण स्तुति आराधना से भरा हुआ है। आराधना का उद्देश्य है कि उसकी प्रतिष्ठा उसे लौटाई जाए जो उसी की है, वही एकमात्र स्तुति के योग्य है। तब आगे कहता है, तूने वध होकर अपने लहू से, जी हां, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, हम लोगों को मोल लिया है। वे स्वर्ग में उसके बहाए गए लहू की स्तुति करते हैं। आज जो यहां प्रभु यीशु मसीह के लहू की स्तुति नहीं करते हैं, उन्हें स्वर्ग में लहू की स्तुति करना होगी। यहां महत्वपूर्ण बात है कि सर्वनाम हम बदलकर वे हो जाता है। वे मेमने की स्तुति करते हैं क्योंकि महाक्लेश में भी कुछ पवित्र जन उद्धार पाएंगे। आगे कहता है, राज्य और याजक, यह महाक्लेश के पवित्र जनों के संदर्भ में है। कलीसिया पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के ऊपर राज करेगी। आइए हम आगे देखेंगे, असंख्य स्वर्गदूत स्तुति में सहभागी हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, लिखा है लाखों और करोड़ों। यूहन्ना के कहने का अर्थ है कि वे अनगिनत थे। यूहन्ना के कहने का अर्थ है कि जब उसने स्वर्गदूतों का शब्द सुना तो सोचा कि वे बहुत हैं, परंतु जब उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उनकी संख्या अनगिनत थी। परमेश्वर के सृजित प्राणी उसकी स्तुति कर रहे थे। मेरे मित्रों, मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं, जबकि आप यहां उसकी स्तुति आराधना करना नहीं चाहते। आगे हम देखेंगे उद्धारकर्ता और परम प्रधान की वैश्विक आराधना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रत्येक सृजित प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी में उसकी वैश्विक आराधना में सहभागी होता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी का पशु, समुद्र में मछलियां भी स्तुति में सहभागी हैं। जीवित प्राणी आमीन कहते हैं। कलीसिया मुख श्रद्धा स्तुति में भूमि पर गिर जाती है। मुझसे हो सकता है तो मैं हालेलुया गान में सहभागी होता, क्योंकि जब हम स्वर्ग के इस महान दृश्य के अंत में पहुंचेंगे तो देखेंगे कि स्तुति, सम्मान और आराधना प्रभु यीशु की ही होना है। यदि आप उसकी स्तुति आराधना करने के अभ्यास में नहीं हैं, तो आप इसी पल आरंभ क्यों नहीं कर देते, क्योंकि आपको वहां पर स्तुति और आराधना करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, यह आपके लिए आवश्यक है कि आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना आरंभ कर दें। यहां पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्याय 6 से अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 6 इसी प्रकार की विभाजन रेखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का तीसरा मुख्य विभाजन अध्याय 4 से आरंभ होता है, जहां हमने स्वर्ग का दृश्य देखना आरंभ किया था। यूहन्ना स्वर्ग में उठाया गया और उसके साथ हम स्वर्ग का दर्शन भी देख रहे थे, परंतु वहां कलीसिया नाम नहीं सुना, क्योंकि कलीसिया इस संसार में उपस्थित विश्वासियों की देह का नाम था। परंतु हमने 24 प्राचीन देखे जो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते थे, जो इस समय मसीह के पास स्वर्ग में थी। इसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पृथ्वी पर कलीसिया का नाम नहीं लिया गया है। पुस्तक के अंत में कलीसिया द्वारा दिया गया एक निमंत्रण है, परंतु वह हमारे इस युग के संदर्भ में है। मेरे प्रियो, अप्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक सुव्यवस्थित क्रम देख सकते हैं, परंतु हमें भविष्यवाणी के संबंध में प्रेरित पत्रस का नियम मानना होगा। दूसरा पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में कहता है, पर पहले यह बात जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अर्थात आप किसी भी भविष्यवाणी को उसी के अर्थ के अनुसार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक भविष्यवाणी को उसकी योजना और परस्पर संबंधित भविष्यवाणियों के संदर्भ में समझना होगा, उसे अन्य भविष्यवाणियों से सुसंगत करना होगा। अध्याय 6 तक पहुंचते पहुंचते हम अधिकतर भूल जाते हैं कि यूहन्ना पुस्तक का सुव्यवस्थित विभाजन प्रस्तुत करता है। अध्याय 1 पद 19 में यूहन्ना को निर्देश दिया गया था, पहली बात, जो बातें तूने देखी है उन सबको लिख ले, देवटों के मध्य महायाजक प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर ज्योति जलाए रख रहा है। और दूसरी बात जो उसको दिया गया था निर्देश के तौर पर, जो बातें हो रही हैं, 7 कलीसियाएं जो पेंतिकोस्त के दिन से कलीसिया के उठाए जाने तक का कलीसिया के इस पृथ्वी पर अनुभव को दर्शाती है। 18 से हवा में उठाए जाने तक, अर्थात कलीसिया का संपूर्ण इतिहास। और तीसरा निर्देश है, जो बातें इसके बाद होने वाली है। अध्याय 4 के आरंभ में यूहन्ना 2 बार कहता है, इन बातों के बाद। कलीसिया का सांसारिक परिदृश्य अध्याय 3 के साथ समाप्त हो जाता है और यूहन्ना 2 बार कहता है, इन बातों के बाद, क्योंकि वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय ऐतिहासिक परिदृश्य रखने वालों के लाभ की निमित्त यह कहता है। अतः अध्याय 4 से आरंभ करके वह उन बातों को दर्शाता है जो इसके बाद होने वाली है। मेरे मित्रों, अध्याय 4 और 5 में हम यूहन्ना के साथ स्वर्ग में हैं। वहां हमने सबसे पहले सिंहासन देखा और प्रभु यीशु वहां था। वह यहूदा के गोत्र का सिंह है। वह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरी यहां उसके पांव की चौकी बनाए जाएं। वह मेमना भी है और हमने उसके प्रथम आगमन पर बल दिया जाना भी देखा है। वह मेमना है क्योंकि वह मुक्तिदाता है और वही है जो इस पृथ्वी का पट्टा अर्थात 7 मुहर लगी पुस्तक को लेने के योग्य है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ही इस योग्य है कि इस पृथ्वी का न्याय करे? एकमात्र वही है जो न्याय करने के योग्य है, इसलिए नहीं कि वह कौन है अर्थात देहधारी परमेश्वर, परंतु वह योग्य इसलिए भी है कि उसने इस पृथ्वी को बचाया है, उसने इस पृथ्वी को बनाया है और वह इस पृथ्वी से प्रेम करता है। इस पृथ्वी को बनाने के कारण उसे इसका न्याय करने का भी अधिकार है। अध्याय 4 में सृजनहार होने के कारण उसकी उपासना की जाती है, परंतु उसने इस पृथ्वी का उद्धार भी किया है और यही कारण है कि अध्याय 5 में उद्धारकर्ता होने के कारण उसकी उपासना की जा रही है। अब क्योंकि वह सृजनहार और तारणहार है, इसलिए केवल वही इसके योग्य है कि पृथ्वी का न्याय करे। मेरे प्रियो, वही एकमात्र है जो इस पृथ्वी पर राज्य करने के योग्य है। यह इस पृथ्वी पर उपस्थित अकिंचन मनुष्य के अभिमान की पराकाष्ठा पर कैसा आरोप है जो न्याय करना चाहता है? क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि केवल प्रभु यीशु ही है जो न्याय आसन पर बैठने के योग्य है? जब तक मनुष्य प्रभु यीशु की बराबरी न कर ले, तब तक वह अपनी क्षमता और शक्ति में न्याय करने के योग्य नहीं है। जो परमेश्वर की ओर निगाह न उठा पाए वह किसी का भी न्याय कैसे करने पाएगा। आज इस पृथ्वी पर जो भी अन्याय हो रहा है वह उन मनुष्यों के कारण है जो दूसरों का न्याय करते हैं। प्रभु यीशु इस योग्य है। अध्याय 5 के अंत में हमें यही चित्रण दिखाया गया है, 7 मुहर लगी पुस्तक का खोला जाना। मेरे मित्रों, अब जब हम अध्याय 6 में आते हैं तब दृश्य फिर से पृथ्वी का आता है और एक स्वाभाविक प्रश्न है, कलीसिया के प्रस्थान के बाद पृथ्वी पर क्या होगा या क्या होता है। महाक्लेश का आरंभ होता है, सताव का आरंभ होता है और अध्याय 6 से अध्याय 18 तक का यही विषय है। अध्याय 6 से अध्याय 8 तक का विषय है पुस्तक की मोहरें खोलना। ये 7 मोहरें खुलकर महाक्लेश के युग का वर्णन प्रकट करती हैं। प्रभु यीशु के मुहर खोलते ही 4 घोड़े निकलते हैं। उस युग में हम शहीदों की मृत्यु और प्रकोप के दिन का आगमन देखते हैं। अति सुव्यवस्थित रूप में 7वीं मुहर खोलने पर 7 तुरहियों का फूंका जाना दर्शाया गया है। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय उसके 2 से लेकर 11 अध्याय के 19 पद में देखते हैं। और 7वीं तुरही के फूंके जाने पर 7 आश्चर्यजनक मनुष्यों का आगमन होता है। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 और 13 अध्याय में देखते हैं। समुद्र से निकलने वाला पशु प्रकोप के 7 कटोरों के उंडेले जाने का कारण बनता है। प्रकोप का अंतिम कटोरा बेबीलोन का दंड लाता है और महाक्लेश का अंत होता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 और 18 अध्याय में हम इसे देखते हैं। अब प्रभु यीशु पृथ्वी पर आता है। मेरे प्रियो, ध्यान देने योग्य रोचक बात है कि पहला और अंतिम दंड बेबीलोन पर ही है, बाबुल का गुम्बट। बेबीलोन परमेश्वर के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह है। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 से 9 पद में पढ़ते हैं। बेबीलोन परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह का भी प्रतीक है और वह है धर्म का और राजनीति का। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 और 18 अध्याय में हम इन दोनों बातों को देखते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी पर मनुष्य के अल्पकालीन दिन का भी अंत होता है। हमारे लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पुस्तक को खोलने योग्य मनुष्य को देखें। वह अब हर एक घटना को निर्देशित कर रहा है। जैसा कि आरंभ में हमें बताया गया है कि यह प्रभु यीशु का अनावरण प्रकाशन है। अब वह दीवटों के मध्य विचरण नहीं कर रहा है क्योंकि वे इस पृथ्वी से उठा लिए गए हैं। वह अब मध्यस्थता करता हुआ महायाजक भी नहीं है। अब वह पुस्तक की मोहरें खोलते हुए पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा का पूरा करने वाला है। महाक्लेश के संपूर्ण दंड इन मोहरों के खुलने से निकलते हैं, जिनमें से तुरहियां, मनुष्य और कटोरे बाहर आते हैं। मेरे प्रियो, यह क्या ही भयानक समय होगा यदि मनुष्य उस समय अर्थात महाक्लेश में पड़ा हो, उस सताव में पड़ा हो। लेकिन जो विश्वासी उसके हैं वे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। मेरे श्रोता मित्रों, यह क्या ही धन्य बात है कि प्रभु यीशु ही एकमात्र वह मनुष्य है, वह परमेश्वर है जो उस पुस्तक को खोल सकता है। आज आपको भी उसके पास आने की आवश्यकता है ताकि आप भी उस महान उद्धार को प्राप्त करें, उस सत्य को प्राप्त करें। आप अपने मन को कठोर ना करें। यदि आप वचन सुन रहे हैं तो इस पर अवश्य ही विचार करें, परमेश्वर से सहायता मांगें ताकि आप सत्य को जानें और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
प्रभु यीशु।